आज हम फर्दर हमें इस लोकस 20 श्लोकस वी गोइंग टू डिस्कस और इसके लिए एक क्वेश्चन का स्लॉट हम क्रिएट करेंगे. क्वेश्चन जो अभी हम हर एक श्लोक में रैंडमली क्वेश्चन एक्सेप्ट कर रहे थे उसके बदले 10 मिनट्स का स्लॉट रखेंगे. जैसे 5-7 श्लोक का डिस्कशन हुआ उसके बाद 10 मिनट्स का या 5 मिनट का ब्रेक होगा जिसमें क्वेश्चन आंसर शेयर कर पाएंगे, फिर वापस हम पढ़ेंगे. तो इससे हमारा टाइम भी सेव होगा और क्वेश्चन आंसर भी मैनेज हो जाएगा. तो ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द लेक्चर, कभी भी कोई भी पॉइंट आपके माइंड में आ रहा है जिसको आप पूछना चाहते हो, जस्ट टू क्लैरिफाई और जस्ट टू आस्क, तो आप उसको केवल अपने पेपर पे नोट कर लो संक्षेप में ब्रीफली कि आप ये प्रश्न पूछने वाले हो. एंड देन वी विल, वो 5-10 मिनट का टाइम होगा उसमें आप सारे क्वेश्चन एक साथ फेंको. ठीक है, सो ओम अज्ञान जीवनांदस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीचैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सर्वदाम्बिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवत्. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. सो टेक्स्ट नंबर 30 तक भगवान ने अर्जुन को सांख्य के ज्ञान के दो पार्ट बताए, शरीर और आत्मा के ज्ञान के दो पार्ट बताए. पहला जो 10 श्लोक थे वो आत्मा और शरीर का अंतर बताया और उसके बाद वाला 10 श्लोक जो है वो उसका अलग अलग दृष्टिकोण से उसको समझाने का प्रयास किया, जिसमें मायावाद, शून्यवाद, ये सब प्रकार के अलग अलग प्रकार की जो थियरी है उसके आधार पर भी भगवान ने समझाने का प्रयास किया. अब टेक्स्ट नंबर 31 से भगवान का पूरा बात करने का जो लेवल है या सब्जेक्ट वही बदल गया. अभी तक आत्मा शरीर की बात कर रहे थे लेकिन टेक्स्ट नंबर 31 से क्षत्रिय धर्म की बात करने लगे कि क्षत्रिय धर्म में युद्ध से अच्छा कोई कर्तव्य है ही नहीं और युद्ध करोगे. टेक्स्ट नंबर 32 में हमने पढ़ा कि वो क्षत्रिय जिनको इतना स्वर्ग का द्वार मिले, ऐसा बड़ा युद्ध उसको मिल गया, धर्म युद्ध, तो उसको तो बड़े प्रसन्न होना चाहिए क्षत्रिय को. अगर कर्मकांड प्रक्रिया जो होती है उसमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाता है. कर्मकांड में जनरली वो लोग स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं या उच्च लोकों में जाना चाहते हैं. लेकिन अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, पालन करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा. ऐसा ऐसा युद्ध करने वाला जो बड़ा पुण्यात्मा हो जाता है. धर्म के लिए युद्ध किया तो अगर तुम ये सोचते हो कि इन सबको मारने से पाप लगने वाला है तो कोई पाप की चिंता मत करो, इन सबको मारने से तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी. तो इसलिए आपका दोनों साइड आपका कल्याण होने वाला है. टेक्स्ट नंबर 32 में इस बात को लेकर के हमने चर्चा की थी. तो राजा जो होते हैं वो जो युद्ध करते हैं वो हमेशा वैदिक संस्कृति में उसको बड़े सोच समझ के ये युद्ध होते थे. ऐसे युद्ध की अग्नि में कूद नहीं पड़ते राजा. कुछ लोग कहते युद्ध कर दो, कुछ युद्ध कर दो, लेकिन ऐसे युद्ध नहीं होते. युद्ध बहुत सोच समझ के करते हैं और वो भी क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं. इसलिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को कह रहे हैं कि जो भी युद्ध साधारण युद्ध होते हैं उसकी तुलना में तुम्हारा ये युद्ध जो है वो अलग है, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र में धर्म युद्ध कर रहे हो, इसलिए बड़ा अच्छा अवसर है अर्जुन तुम्हारे लिए क्षत्रिय होने के कारण. तो टेक्स्ट नंबर 32 हमने 32 तक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. वी कैन जस्ट हैव 1 और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम 32. 32 में से एक या दो क्वेश्चन वी कैन टेक, कोई है नहीं? टेक्स्ट नंबर 32 से। हाँ, अगर हार जाओगे तो वीर गति को प्राप्त करोगे, तो धर्म के लिए तुम हार गए, मर गए, धर्म के लिए मर गए, तभी भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीतोवा भोक्ष से महिम अतोवा प्राप्त से स्वर्गम, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में भगवान बताते हैं। अतोवा अगर मर गए तो प्राप्त से स्वर्गम, स्वर्ग चले जाओगे। अगर जीतोवा, अगर जीत गए तो भोग्य से महिम, पृथ्वी का भोग करोगे। और फिर भी लोग तुम्हारे तालियां बजाएंगे, क्यों ताली बजाएंगे? तुमने धर्म युद्ध किया, इसलिए। यस, ओके, सो वी कैन गो फर्दर। टेक्स्ट नंबर 33 पढ़िए।
तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते, तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप होगा और तुम योद्धा के रूप में अपना यश खो देगा।
यस, तो भगवान अर्जुन को कहते हैं यहाँ पर कि तुम भोग करना चाहते थे, अर्थात इंद्रिय तृप्ति का तुम्हारा विचार था। जब आर्गुमेंट किए थे ना अर्जुन ने, तो उसने पांच कारण बताए थे, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। पांच कारण थे कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, तो उसमें से एक कारण था कि मैं क्या भोग करूंगा, इन सबको मारने से मुझे क्या भोग होगा। इन लोगों का लहू से बना हुआ जो राज्य है, उनके उनके लहू के ऊपर खड़ा किया जो राज्य है, उसके ऊपर हम क्या भोग कर पाएंगे, कोई आनंद नहीं रहेगा। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को यही बात बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, ये धर्म युद्ध नहीं करोगे, तो निश्चय रूप से तुम्हें पाप लगेगा। लोग क्या कहेंगे कि तुम निश्चय रूप से तुमने पाप का मार्ग स्वीकार कर लिया, धर्म युद्ध को जो छोड़ दिया, तो क्या हुआ इसका अर्थ? तुम धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हो, और जो धर्म को फॉलो नहीं कर रहा है वो पाप का आचरण कर रहा है, पाप का आचरण हो रहा है इससे। तो पाप करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको सुख कहां से मिलेगा, उसका एंजॉयमेंट कहां से मिलेगा? इसलिए अर्जुन तुम्हारा ये विचार ही गलत है, युद्ध नहीं करने से तुम्हें सुख मिलेगा। लेकिन मैं मानता हूं, कृष्ण ऐसा कह रहे हैं, कि युद्ध करने से तुम्हें सुख मिलेगा। अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें सुख मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूं। तो इस तरह से भगवान ने ये आर्गुमेंट दिया अर्जुन को। अभी भगवान दूसरा चीज भी बताते हैं कि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या क्या होगा। तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध नहीं करने का, हमें युद्ध करने का, तो युद्ध नहीं करोगे। टेक्स्ट नंबर 13 से लेकर के 4-5 श्लोक 37 तक भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं, युद्ध नहीं करने से क्या नुकसान होगा। अभी तक बताए युद्ध करने से लाभ क्या होगा, अब देखो युद्ध नहीं करने से क्या नुकसान होगा। पढ़िए टेक्स्ट नंबर 34 आगे का श्लोक। हाँ, ये नहीं सोचना अर्जुन कि लोग सब तालियां बजाएंगे, वाह अर्जुन कितना अच्छा है, उसने युद्ध करना छोड़ दिया, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। ऐसा लोग कहेंगे कि ये पाप आचरण करने वाला अधर्मी राजकुमार था, अधर्मी क्षत्रिय था, वो ऐसा मानेंगे लोग। और क्षत्रियों के लिए तो यश या कीर्ति खत्म हो जाना, ये तो बड़े कष्ट की बात है, बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत ही पेनफुल है। प्रपद तत्पर में कहते हैं, बोथ एज फ्रेंड एंड फिलोसोफर टू अर्जुना, लॉर्ड कृष्णा नाउ गिव्स हिज फाइनल जजमेंट रिगार्डिंग अर्जुनास रिफ्यूजल टू फाइट। द लॉर्ड सेज, अर्जुना, इफ यू लीव द बैटलफील्ड बिफोर द बैटल इवन बिगिंस, पीपल विल कॉल यू अ कावर्ड। लोग तुम्हें कायर कहे, कायर है अर्जुन, तो तुम्हारी कीर्ति थी कि इतना शूरवीर है, लोग बोले भाग गया अर्जुन, भाग गया। एंड इफ यू थिंक दैट पीपल विल मे कॉल यू बैड नेम्स बट दैट विल सेव योर लाइफ बाय फ्लीइंग द बैटलफील्ड, देन माय एडवाइस इज दैट यू वुड बेटर टू डाई इन द बैटल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम भाग जाओगे, कम से कम तुम्हारा प्राण का भय है, अपयश का भय नहीं है और प्राण का भय है, तो ठीक है, युद्ध में मर जाना ही अच्छा है। प्राण का भय है तो युद्ध में मरना अच्छा है, और अगर प्राण का भय नहीं है तो कीर्ति कलंकित हो जाएगी। लोग बोलेंगे, अर्जुन जानते हो, कुंती का बेटा जानते हो, कौन था वो? अरे बड़ा सुरवीर था, लेकिन जैसे ही उसने भीष्म द्रोण दुर्योधन को देखा, सारी हिम्मत चली गई, सूख गया पूरा, हवा निकल गई पूरी, भाग गया उधर से। कायर मानेंगे लोग उसको, पूरा मैं कायर कहेंगे लोग। सो यू शुड नॉट फ्ली फ्रॉम फियर ऑफ योर लाइफ, बेटर टू डाई इन द बैटल, दैट विल सेव यू फ्रॉम द इल फेम ऑफ मिसयूजिंग माई फ्रेंडशिप। लोग क्या कहेंगे, किसका मित्र था वो? कृष्ण का मित्र था। कैसा निकला? कायर निकला। बोलो, कृष्ण का ये मित्र भगवान के साथ जुड़ते सब कायर बन जाते। लोग ऐसा बोलते, मेरा भी नाम खराब हो जाएगा, है ना? लोग बोलेंगे कृष्ण भी कायर, लोग ऐसा मानेंगे, और तुम्हारा भी प्रेस्टीज जो है, मान सब चला जाएगा सोसाइटी में। कौन अर्जुन है? कौन अर्जुन? वो जो कायर भाग गया, वो लोग ऐसा कहेंगे। तो इसलिए भगवान नहीं चाहते कि अर्जुन अपना भी नाम बिगाड़े और अपना कृष्ण का भी नाम बिगाड़े। तो टेक्स्ट नंबर 35 पढ़िए।
जिनके महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे सदैव तुम्हें कुछ मानेंगे।
हाँ, प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं कि ये नहीं सोचना कि दुर्योधन, कर्ण और जितने सब योद्धा यहाँ पर खड़े हैं, वो सोचेंगे वाह अर्जुन वाह, तू बड़ा दयालु है, आज तक हमने तेरा वीर स्वरूप देखा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि तू इतना दयालु भी है, तो बहुत दयालु है अर्जुन, वाह तालियां, ऐसे। इस तरह से नहीं, भगवान कहते हैं कि कोई ऐसा नहीं कहेगा कि तू बहुत दयालु है, तेरे हृदय में बड़ी करुणा है, तू एक वैष्णव है, तेरा मन बड़ा स्वच्छ है, कोमल है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। ये सब लोग ऐसे कहेंगे कि उसको मृत्यु का भय था, उसको लगा कि इसको मार डालेंगे सब लोग, तो भाग गया मृत्यु के भय से। भीष्म द्रोण कर्ण ऐसे बड़े बड़े योद्धाओं के सामने बेचारा अर्जुन क्या करेगा, ऐसा मान करके वो भाग गया। तो तात्पर्य में इस बात को बताते हैं, दे विल थिंक दैट यू हैव लेफ्ट आउट ऑफ फियर फॉर योर लाइफ, एंड दस द एस्टिमेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी विल गो टू हेल। इसलिए वो लोग गलत तुम्हारा अपयश कीर्ति गान करेंगे, गलत रूप से, ये तो गलत है, ये देखो दुर्योधन की सेना में कोई युद्ध, अर्जुन युद्ध करे कि अर्जुन युद्ध ना करे, कोई उसकी तारीफ नहीं करने वाला। दुर्योधन की सेना युद्ध करेगा तभी भी तारीफ नहीं करेगा, और शायद करे भी तारीफ द्रोणाचार्य कि अर्जुन एक योद्धा की तरह लड़ा, भीष्म एक योद्धा की तरह लड़ा, भीष्म ऐसा सोचेंगे अर्जुन। लेकिन अगर तुम लड़ोगे नहीं तो दुर्योधन कर्ण तो तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन भीष्म द्रोण भी तारीफ नहीं करेंगे। भीष्म द्रोण भी ऐसा सोचेंगे कि ऐसा तो अर्जुन से कभी आशा नहीं किया था। सो टेक्स्ट नंबर 36 पे कंटिन्यू कर रहे हैं, पढ़िए।
तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है?
अब क्या होगा कृष्ण अर्जुन, सोचो, कोई तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हें क्षत्रिय स्पिरिट जानते नहीं, तुम क्षत्रिय को कोई बोल दे, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, क्षत्रिय को तुम कोई ऐसा बोले ना कि तुम कायर हो, बस खत्म, देखो महाभारत शुरू, कितना इतना ही बोल दो कायर हो, या फिर उसको बोल दो कि तुम नपुंसक हो, क्षत्रिय को ऐसा बोल दो, खत्म शुरू हो जाएगा वो। तो ये क्षत्रिय स्पिरिट होती है। एक बार एक एग्जाम्पल के रूप में प्रभुपाद बता रहे थे कि 300 साल पहले एक राजा था, उसका नाम था यशोमंत सेन, वो बंगाल में होगा, यशोमंत सेन एक राजा था। वो राजा जो था वो औरंगजेब का सेनापति था, आई मीन वो बड़ा औरंगजेब का डायरेक्ट अंडर में उसके था उस समय। तो क्या हुआ कि वो एक युद्ध करने गया, युद्ध करके युद्ध में वो हार गया, एक्चुअली मर नहीं गया लेकिन हार गया, अर्थात उसको बंदी बना करके छोड़ दिया। मीन्स युद्ध जीत लिए और बाद में सामने वाली सेना ने बोला जाओ घर चले जाओ, तो मैं छोड़ दिया दया करके। तो यशवंत सेन जो थे वो मुंह लटका कर वापिस आया घर, और घर आकर के उसने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो, तो उसकी पत्नी दरवाजा नहीं खोला। एक नौकर था, नौकर को बोले जाओ चेक करो कौन है, तो नौकर ने जाकर पूछा कौन है, तो बोले राजा यशोमंत सेन आए हैं। तो बोले कैसे आए, पर युद्ध में हार के आए हैं। तो जो रानी थी और उसकी पत्नी थी उसने कहा, बोले हार के आए हैं तो फिर राजा यशोमंत सेन कौन है, ये कौन राजा, कहाँ का राजा, वो हार गया आप क्या राजा है ना। तो क्षत्रिय बोले उसको बोलो कि मैं क्षत्रिय की बेटी हूँ और क्षत्रिय से शादी किया है, और इसलिए क्षत्रियों का एक ही रोल होता है, जब वो युद्ध भूमि में जाएगा या तो विजयी होकर वापिस आएगा या तो उसका मृतक शरीर वापिस आएगा, वो वीर गति को प्राप्त होकर आएगा। और उनको बोलो कि उनको इस तरह से मुंह लटका के घर आने में लाज नहीं आई क्षत्रिय होकर के, तो इस तरह से उनको डांट दिया। तो दिस एग्जाम्पल वॉज गिवन इन क्षत्रिय स्पिरिट, अगर क्षत्रिय स्पिरिट में ऐसा स्ट्रॉन्ग क्षत्रिय स्पिरिट होता था। अभी अर्जुन के विषय में कोई क्या कहेगा, बड़े कितना वीर होकर के द्रौपदी को जीत के लेके आ गया, क्या क्या उस कितने सामर्थ्य था उसके पास अर्जुन के पास, लेकिन अर्जुन हार गया ऐसा मानेंगे लोग। फिर विराट का युद्ध पता है आपको, विराट में क्या हुआ था, जब अज्ञातवास था तो अज्ञातवास जब खत्म हुआ उसके अंतिम दिन पर अचानक से एक ऐसा युद्ध निर्माण हो गया कि विराट का एक स्थान है जहां पर पांडव लोग रहते थे अज्ञातवास में, लेकिन इन लोग को थोड़ा भय था कौरवों को कि शायद ये लोग विराट में छुपे हुए, कंफर्म नहीं था, तो उधर उन्होंने आक्रमण किया विराट के ऊपर और उस समय उनका खत्म हो गया अज्ञातवास। तो पहले तो उत्तर, विराट का बेटा था उत्तर, वो बड़ी डिंगे लगा रहा था कि अरे इसको मैं मार दूंगा, उसको मार दूंगा, द्रोण है, भीष्म है, दुर्योधन है, क्या है, कितने है? हम भी तो योद्धा है, हम थोड़ी कोई खिलौने खत्म कर देंगे, उसमें क्या है, और पूरी कौरव सेना सामने, और ये भाई साहब उत्तर एक छोटा सा बच्चा था और वो अर्जुन के साथ गए, अर्जुन उसका सारथी बन के गया था, अर्जुन के साथ गए, वो देख करके उसको पसीना पसीना हो गया, तो भागने का तैयारी कर रहा था, और मैं तो भाग जाऊंगा, बोले इनसे युद्ध कैसे हो सकता है, बोले इनको देखने से डर लगता है, युद्ध की तो बात छोड़ दो, देखने से ही डर लग रहा है इनको, तो कैसे युद्ध करें इनके साथ। तो अर्जुन ने अकेले, अर्जुन ने कहा तुम साइड में बैठ जाओ, तुम्हारा काम का ये नहीं है युद्ध। अर्जुन ने एक अकेला सारी कौरव सेना के सामने खड़ा रह गया, उसके हृदय में, उसके मन में, उसके चेहरे पर भय का एक अंश भी नहीं था, उसको भय लगे एक अंश भी नहीं था भय का, सारी सेना सामने खड़ी है कौरव की, भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन सब खड़े थे, कुछ भी नहीं उसके, और केवल खड़ा रहा नहीं, उसने चुनौती दी कि तुम्हारे अगर तुम में शक्ति है तो तुम एक साथ सब आओ मेरे साथ युद्ध करने के लिए, सब आओ मेरे साथ एक साथ और मैं तुम सबको परास्त कर दूंगा। और हुआ भी ऐसा कि आक्रमण हुआ भी, लेकिन विराट के युद्ध में अर्जुन अकेला जीत गया और कौरव सेना हार गई, अकेला अर्जुन जीत गया, कुछ नहीं कर पाए कोई भी। तभी भी भीष्म ने कहा था दुर्योधन को, देखो ये सूरवीर, ये अर्जुन, इससे तुम युद्ध क्या करोगे, ये पूरी सेना को अकेला खत्म कर देता है, तुम क्या इसके साथ युद्ध करोगे। तो ये सारी जो गाथाएं सुनी है ना, तो भगवान ने भी सुनी थी ये सब गाथाएं, बोले सब मिट्टी में मिल जाएगा तुम्हारा यश, कोई सुनेगा नहीं तुम्हारी बात। इतना सब, इतना विराट में इतना बड़ा युद्ध करने वाला अर्जुन लास्ट मोमेंट पर भाग गया युद्ध का तैयारी में। तो टेक्स्ट नंबर 37 में भगवान इस सेक्शन का अंतिम चीज बता रहे हैं, पढ़िए।
कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य के भोग करोगे। अतः धर्म संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो।
हो गया ना, जीतो वा प्राप्त से स्वर्गम, अथवा प्राप्त से महिम, सॉरी, अथवा प्राप्त से स्वर्गम, जीतो वा प्राप्त से महिम, तथा युद्धाय युद्धस्व, ऐसा कुछ है शो का। तो बात इसलिए युद्ध करने के लिए युद्ध करो, अगर जीत जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, पृथ्वी मिलेगी, हार जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, विन विन, दोनों जगह विन विन पोजिशन है, इधर भी तुम्हारा फायदा है उधर भी तुम्हारा फायदा है। तो इसलिए अर्जुन तुम्हारे लिए युद्ध करने से श्रेय कर, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। युद्ध करोगे जीत गए तो फायदा है, हार गए तभी भी फायदा है, और सामने वाले जो है उनका तो जीत गए तो भी कोई फायदा नहीं और हार गए तभी भी कोई फायदा नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए युद्ध करना वो सबसे उत्तम माना जाता है। एक्चुअली कृष्ण अर्जुन को पूर्ण रूप से क्षत्रिय स्पिरिट का उदाहरण देकर के भगवान उसको प्रयास कर रहे थे कि तुम युद्ध की महत्ता को समझो। युद्ध करने वाला व्यक्ति बाद में ये नहीं सोचता कि नहीं इसके सामने युद्ध कैसे करूंगा, उसके सामने युद्ध कैसे करूंगा, ये गलत विचार है ना। अगर प्रभुपाद एक एग्जांपल देते थे, डांसिंग गर्ल, एक बंगाली में, अगेन उज्जवल प्रभु माइट हेल्प, एक बंगाली प्रोवर्ब है, कहावत है कि वो नाचने वाली जो होती है उसको शर्म कैसे, as I don't know what is in Bengali, the famous dancing girl. तो गुंथन भारत में जो स्त्रियां होती है वो बाल में गुंथन डालते हैं, अर्थात वो उसको बांध देते हैं, और जो नृत्यांगना होती है वो बांध दिया उसने। तो अपन एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब वो स्टेज पर, when she डांसिंग गर्ल वॉज ऑन द स्टेज, वो जो स्टेज के ऊपर गई तो उसने देखा कि स्टेज में से देखा कि बहुत सारे उसके रिश्तेदार सामने खड़े, वो डांसिंग गर्ल थी अर्थात नृत्यांगना थी, और सामने देखा कि बहुत सारे रिश्तेदार सामने खड़े, तो उन सबको देख करके उसको शर्म आ गई, उसको शर्म आ गई, तो उसने अपना गुंथन खोल दिया। तो गुंथन खोला तो बाल आगे आ जाएंगे, अब बाल आगे आ जाएंगे तो बाल से क्या होगा, चेहरा ढक जाएगा, दिखेगा नहीं कौन डांस कर रहा है। तो प्रभुपाद ये एग्जांपल देके बताया कि जैसे उसने खोल दिया और वो शर्माने लगी, सो व्हाट इज द यूज ऑफ इस, ये शर्म का, ये लज्जा का क्या मूल्य। जब वो नृत्य करने आए हो तो तुम्हें इसका, तो नृत्य करना है फिर, तो इसमें लज्जा की क्या बात। So a rascal kills a man and makes the excuse that killing is not sinful because in Gita it is advocated. Apparently to rascal it appears that Krishna is encouraging Arjuna to fight. मूर्ख लोग ऐसा कह सकता है कि कृष्णा अर्जुन को युद्ध करने के लिए फोर्स कर रहे हैं, इसलिए रशिया में कुछ साल पहले इसको भगवद गीता को कट्टरवाद साहित्य नाम दिया था, भगवद गीता कट्टरवाद साहित्य, युद्ध करवाना चाहता है, युद्ध नहीं करने वाले आदमी को भी भड़का देता है कि युद्ध करो, ऐसे इतनी सारी आर्गुमेंट है तो कोई भी युद्ध कर लेगा ना। भगवान तो बस तोले पड़े हैं कि ना युद्ध कैसे नहीं करेगा, कर युद्ध, और वो बेचारा अहिंसा की बात कर रहा था, अहिंसा परमो धर्म, भगवान ने उसको क्या करके हटा दिया। तो स्वधर्म के पालन में लज्जा कैसी, युद्ध करने में लज्जा की क्या, लज्जा कैसी युद्ध करने में, क्षत्रिय है और धर्म के लिए युद्ध कर रहा है तो इसमें लज्जा का क्या बात है। और इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि इसका वध हमें करना है, इसका वध हमें नहीं करना है। अब युद्ध करने आए हो तो एक ही काम होता है, सामने वाली शत्रु सेना को समाप्त करो। तो दैट एग्जाम्पल प्रभुपाद हैज गिवन अर्लियर। तो ओके, सो हैव अ 5 मिनट टॉक। क्वेश्चन है किसी का? और आई कंटिन्यू। ना ना ना, अर्जुन का इंटेंशन था ही नहीं मृत्यु कर उनको हराने का, मिस मारने का इंटेंशन था ही नहीं, उन सबको बेहोश कर दिया, दैट्स इट। उसके उस समय उसने दिव्यास्त्र का उपयोग किया था, और दिव्यास्त्र में सम्मोहन वाण होते हैं जिसमें सब बेहोश हो जाते हैं। तो अर्जुन ने उन सबको किसको मारा नहीं, और ऐसे भी दुर्योधन भीम का प्रतिज्ञा था ना, तो सब वो मारेगा तो ये मार लेगा तो खत्म हो गया प्रतिज्ञा। इसलिए मोर क्वेश्चन। नहीं नहीं, भगवान ये कह रहे हैं कि अगर मरने का डर है तो, मरने का डर है, हारने का अर्थ क्या होता है मरना। हाँ, लेकिन उसमें सुख नहीं भोगेगा ना वो मर जाएगा तो, उसके लिए सुख नहीं बचेगा, वो एंजॉयमेंट के अंदर आता है। जीतेगा तो सुख है, हारेगा तो दुख है, ऐसा वो उसका वो विपरीत मान रहा था। लेकिन अगर वो जीत गया तभी इन लोग के बाद ये सब मर गए फिर क्या फायदा, अगर मैं हार गया तो ऑटोमेटिक है कि भाई मेरे पास कोई सुख बचा ही नहीं, अब तो हार ही गया मैं तो, इसलिए एंजॉयमेंट के अंडर में आता है वो। मोर क्वेश्चंस। तो रण छोड़कर भाग जाना ये किसी क्षत्रिय को शोभा नहीं देता, लेकिन भगवान को अपने भक्तों का जो प्रेम है उसके लिए ये अपमान को भी सहन करने के लिए वो तैयार है रण छोड़ने के लिए। लोग ऐसा बोलेंगे भाग गया रण छोड़ करके, तो भगवान बोले कि मैं भागने को तैयार हूं अपने भक्तों के लिए, तो भक्तों के लिए वो भाग गए रुक्मिणी के कारण। रुक्मिणी के कारण बोले कौन, ये सीधी सी बात है ना, अगर आप अगर समझ लो कि आपकी पत्नी आपको मैसेज देती है अर्जेंट मैसेज आपको आना है, तो बोले तेल लेने गए युद्ध नहीं करना है युद्ध, सीधा भाग गए। सो कृष्ण वॉज राइट इन दैट, लेकिन फायदा परिणाम क्या हुआ, रण छोड़ रहा है कि लोग उनको जय करते हैं, उनकी उनका पूजा करते हैं, दैट इज कृष्ण। सब कुछ साथ में, सब कुछ साथ में, इधर हाँ एकदम एकदम। हाँ हार गया तो
ब्राह्मणों को सबको मृत्युदंड मिलेगा।
कौन हार गया तो?
जरासंध। ब्राह्मण प्रार्थना करने लगे भगवान से कि आप प्लीज हार जाने दीजिए।
अच्छा, यस यस, देयर इज अ चांस यस, कि अगर वो हार गया तो पागल है वो, हारेगा थोड़ी, उसके पास मर जाएगा फिर क्या मृत्युदंड देगा, फिर भी लेकिन वो अहंकार के वश ऐसा बोल रहा होगा। ये दिस फाइन, हाँ देखो अभी भगवान ब्राह्मणों की प्रार्थना, फिर रुक्मिणी का लेटर, और काल यवन को भी तो करना था उधर, तो काल यवन भी आया था उधर, उसको भी इधर लेके आना था, तो ये सारी चीज एक साथ थी, तो बोले सबको एक इसका एक ही सॉल्यूशन है क्या, भाग जाओ युद्ध छोड़ करके भाग जाओ, तो काल यवन को भी मार देंगे, रुक्मिणी का भी काम हो जाएगा, और जरासंध के जो सैन्य जो बंदी राजा है उन लोग को भी न्याय हो जाएगा। ओके सो आई कैन गो फर्दर. टेक्स्ट नंबर 38 पढ़िए. हाँ, ये अभी पूरा अलग बात बता रहे भगवान. अब क्या कह रहे कृष्णा, पहले तो कहा कि युद्ध करना चाहिए तुम्हें, इसमें स्वर्ग मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, ऐसा सब बताया. लेकिन अब भगवान कहते हैं कि ज्ञान के अंतर्गत होकर के कर्म करो, अर्थात सुख और दुख ये दोनों की चिंता किए बिना युद्ध करो. अभी अर्जुन को ऐसा कह रहे, ज्ञान से युक्त होकर क्या सुख के पीछे क्या पड़े हो, छोड़ो सुख और दुख की चिंता से पर होकर के युद्ध करो. अभी अर्जुन को एक नई चीज भगवान ने बताई है यहाँ पर. तो अभी तक आर्ग्यूमेंट्स में भगवान यही बता रहे थे, लेकिन अब की जो आर्ग्यूमेंट आ रही है भगवान का, अब जो समझा रहे हैं वो ज्ञान के आधार से, ज्ञान का प्रयोग करके समझा रहे हैं. इस टॉकिंग इन डेप्थ पे, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म योग. कर्म और ज्ञान, ज्ञान का उपयोग करके अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है जिसमें वो कर्म करता है लेकिन फल की आशा नहीं रखता, वो फल नहीं चाहता है कर्म, अर्थात वो युद्ध करेगा लेकिन जीत या पराजय ये दोनों में से किसी एक के भी कामना नहीं करता, इस प्रकार का वो कर्म भगवान उसको कह रहे हैं, अर्थात निष्काम कर्म योग. और प्रभुपाद इसको बुद्धि योग भी कहते हैं. बुद्धि योग के आधार पर कर्म करो, इसको बुद्धि योग के में युक्त होकर के तुम कर्म करो. बुद्धि योग का अर्थ क्या होता है? बुद्धि योग का अर्थ होता है या तो निष्काम कर्म योग बोल सकते हो, या फिर उसको डिटैच एक्टिविटीज. डिटैच एक्टिविटी अर्थात अनासक्त होकर के कर्म करो. अभी ये सेक्शन जो है डिटैच एक्टिविटी, अभी ये जो सेक्शन जो है इसका आगे दो श्लोकों में बड़ी चर्चा, दो चैप्टर में बड़ी चर्चा होने वाली है. ज्ञान का उपयोग करके कर्म करो, इस चीज को हमें समझना है. निष्काम कर्म योग दो लेवल पे भगवान बताया, यहाँ पर दो लेवल आप समझ सकते हो. निष्काम कर्म योग के दो लेवल हो सकते हैं. एक लेवल ऐसा होता है जिसमें वो डिटैच अर्थात अनासक्त होकर के कर्म करता है, हाँ, फल की आशा के बिना, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, इस तरह से वो कर्म कर रहा है और ये उतना जानता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है. तो ये हुआ पहला एक तरीका. दो कम से निष्काम कर्म, तो उसको क्या होता है कि उसको कर्म का फल नहीं लगता है, फल नहीं भुगतना पड़ता है. लेकिन उसकी एक जगह से अनासक्ति हुई लेकिन दूसरी किसी जगह पर आसक्ति नहीं हुई, है ना. जैसे एक ग्लास में पानी था, वो पानी के बदले हमें ग्लास में दूध डालना है, ग्लास भरा होना चाहिए, तो वो क्या करता है, ग्लास में से पानी है वो निकाल देता है, बस खत्म, वहां तक सीमित हो गया. लेकिन उसमें दूध नहीं डालता है, अर्थात उसके पास जो एक चीज थी कर्म में आसक्ति, फल में आसक्ति, वो चली गई. फल में जो आसक्ति थी वो चली गई, लेकिन अभी आसक्ति किसके साथ गई, अर्थात वो कहीं पर तो आसक्त होगा ना, अगर फल में आसक्त नहीं होगा तो कहीं पर आसक्त होगा, लेकिन उसके पास वो ऑप्शन नहीं बचा, उसने कर्म का फल त्याग कर दिया. हर एक व्यक्ति, आपको भी थोड़ा आश्चर्य होता होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति बिना रिजल्ट के कैसे कर्म कर सकता है, है ना, कोई काम कैसे करेगा. अगर आपको समझ लो कोई कर्म का आपको बोल दे कि आप कितना भी भक्ति शास्त्री करो इसके परिणाम आपको नहीं मिलने वाले, या आप कोई बिजनेस करो और बिजनेस करने के बाद बोलो बिजनेस करो लेकिन प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है, तो कौन करेगा कर्म. हम सभी कार्य करते हैं किसी उद्देश्य के साथ, राइट, कुछ हमारा हम फल की आशा चाहते हैं। तो लेकिन निष्काम कर्म योग में दूसरा जो लेवल है उसमें क्या होता है कि वो कर्म का फल भगवान को अर्पण कर देता है, और पहला लेवल जो है उसमें क्या होता है वो कर्म का फल त्याग करता है लेकिन वो भगवान को अर्पण नहीं करता। अभी दोनों ही तरीके से वो व्यक्ति फल से तो मुक्त हो जाता है कर्म के फल से, और वो वाला व्यक्ति अधिक से अधिक ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता है अधिक से अधिक, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति जो है वो धीरे 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 अगर किसी भक्त की कृपा हो गई तो वो भगवान के पास भी पहुंच सकता है। तो क्या हुआ इसका वर्क एक्टिविटी जो है उसमें फल से अनासक्ति और भगवान से आसक्ति, और भगवान में कोई ब्रह्मवादी हो सकता है, कोई परमात्मावादी हो सकता है, कोई भगवान को, ये तीन में से अलग अलग कैटेगरी के आसक्ति वाले लोग हुए। आप समझे नहीं समझे? ब्रह्म परमात्मा भगवान ये हमने चर्चा किया था, जिसमें जो सबसे प्राइमरी स्टूडेंट है वो कहाँ जाता है, वो ब्रह्म के पास जाता है। थोड़ा एडवांस स्टूडेंट है वो कहाँ जाता है, परमात्मा के पास। और जो कंप्लीट है, जो परफेक्ट है, संपूर्ण है, वो कहाँ जाता है, वो भगवान के पास। तभी कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है उसकी फल वो उसका फल की इच्छा नहीं है, लेकिन वो ब्रह्म को प्रसन्न करने के लिए, ब्रह्म के लिए कर्म कर रहा है, ब्रह्म प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है। फल नहीं चाहिए उसको, ब्रह्म प्राप्ति, अर्थात मैं आत्मा हूं, मुझे ब्रह्म में विलीन होना है, ऐसे इसलिए वो कर्म कर रहा है। दूसरा व्यक्ति कर्म कर रहा है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और तीसरा व्यक्ति कर्म कर रहा है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो ये तीनों जो है अलग अलग प्रकार, तीन कैटेगरी हमने बताई, वो सेकंड लेवल में आता है निष्काम कर्म योग की। और जो फर्स्ट लेवल है उसमें परमात्मा का या ब्रह्म का या भगवान का कोई नाम और निशान नहीं है, वो व्यक्ति सूखे पेड़ की तरह रह जाता है, उसके पास कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं है, सब नेगेटिव एंगेजमेंट। तो इसको बोलते हैं निष्काम कर्म। हाँ यस, मुझे पता है यहाँ प्रश्न होंगे, पूछिए, पूछो, कौन पूछना चाह रहा है? अच्छा, आई वॉज रॉन्ग, ठीक है। सेक ऑफ फाइट, युद्ध करने के लिए युद्ध करो बस, जस्ट फॉर द सेक, यस यू वांट टू आस्क। हाँ, वो फल की इच्छा के बिना कर्म करेगा, करने के लिए, एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी, केवल मेरा कर्तव्य है इससे मैं युद्ध कर रहा हूं बस। हाँ, वो मुझे नहीं चाहिए, जो होगा ठीक है, वो फर्स्ट वाला है। लेकिन दूसरा वाला क्या सोचता है कि मेरे कर्म का रिजल्ट मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे कर्म जो है उसका रिजल्ट ऐसा आना चाहिए कि ब्रह्म प्रसन्न हो या ब्रह्म की प्राप्ति हो, मुझे उससे कोई लाभ नहीं है। अर्थात वो शरीर की भावना से काम नहीं कर रहा है, उसको उसके कर्म का परिणाम ब्रह्म परमात्मा या भगवान इनको प्रसन्न करना है। हम मीन्स फल की आशा, फल की प्राप्ति के लिए नहीं। आप पर्टिकुलरली अगर आप अपने बात करेंगे तो हो सकता है कि इसका उत्तर कुछ और हो, लेकिन जन साधारण समाज में जो लोग कार्य करते हैं वो लोग फल की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। बिना फल की प्राप्ति से कोई पागल है क्या कर्म करेगा, ऐसा मान, कोई कर्तव्य समझ के कर्म नहीं कर रहे, सब लोग अपनी फल की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, है ना, कोई भी व्यक्ति। यस, नहीं उनको फल नहीं चाहिए बस। ज्ञानियों में होती है ऐसी, जो शुष्क ज्ञानी होता है वो इस प्रकार से सोच सकता है, लेकिन वो निष्काम कर्म योग का आधार ले रहा है। आपका अभी 1 से 6 चैप्टर तक योगा लेटर आएगा, तो योगा लेटर में निष्काम कर्म योग ज्ञान योग, कर्म योग, अष्टांग योग, सबकी स्टेप बाय स्टेप चर्चा होगी। यहाँ फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कर्म के फल नहीं चाहते, लेकिन वो लोग भगवान से शरणागत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ ऐसे लोग हैं कि जो लोग मंदिर में नहीं जाते और वो लोग कई बार संन्यास ले लेते हैं, बाल खींच खींच के तोड़ देते हैं और वो अपने आप को पैदल चलते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं। तो ये लोग जनरली कर्म का त्याग करना चाहते हैं या निष्काम कर्म योग करना चाहते हैं। इसमें क्या होता है कि वो लोग फल नहीं चाहते, वो आत्मा के लेवल पे काम करना चाहते हैं, लेकिन वो भगवान से जुड़े हुए नहीं है। लाइक दैट दे डोंट वांट रिजल्ट्स। परम सत्य से आसक्त होकर कर्म करना। परम सत्य तीन भाग में आते हैं, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान। या बिकॉज वो लोग फल नहीं चाहते। यस, दे कम इनटू दैट कैटेगरी। समाज सेवा वाले लोग, उनको फल नहीं चाहिए। लेकिन सारे फिलंथ्रोपिस्ट ऐसे नहीं होते। देयर आर मेनी फिलंथ्रोपिस्ट, वो लोग यश के लिए कार्य करते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज सेम, यू नो, फेम के लिए काम करते हैं। यस, ड्यूटी से कर्तव्य युद्ध, उस अर्जुन के लिए युद्ध कर्तव्य था। युद्ध इम्पोर्टेंट नहीं है, कर्तव्य इम्पोर्टेंट है। तो हम लोगों को कर्तव्य, अपना कर्तव्य कर्म करो। आपका जो कर्तव्य, आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, माता हो, हाउस वाइफ हो, वट एवर, आपका कर्तव्य है, उससे भागो मत, उसको करो। दैट इज कर्तव्य करना है। युद्ध का अर्थ है कर्तव्य। हाँ, सेकंड वाले का परमात्मा के लिए कार्य कर, परमात्मा प्राप्ति के लिए कार्य करता है। अर्थात जो भी कार्य वो करता है, उसका फल के प्रति उसका मोह नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य है कि किसी भी तरह से मैं ऐसे कर्म करूं ताकि मैं परमात्मा को प्रसन्न कर पाऊं और तक परमात्मा के हम प्राप्त कर रहा। तो कर्म रुकता नहीं है, कर्म चालू रहता है, उसमें भी एक्टिविटी कंटिन्यू है, लेकिन उनका डायरेक्शन अलग अलग है, उद्देश्य अलग अलग है। सेम कर्म दिखने में कहीं पता नहीं पड़ेगा कि ये ब्रह्मा वाला है या परमात्मा वाला है, दिखने में नहीं पता पड़ेगा, लेकिन उसका उद्देश्य बदल जाता है। यस, सो दिस इज निष्काम कर्म योग। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, लॉर्ड कृष्ण नाउ डायरेक्टली सेज दैट अर्जुन शुड फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग बिकॉज ही डिजायर्स द बैटल। नाउ ही इज गिविंग द आंसर, बिकॉज कृष्ण डिजायर्स द बैटल। भगवान युद्ध चाहते हैं, इसलिए युद्ध करो। तुम युद्ध करो, क्यों करो युद्ध? फल का ये फल तो तुम्हें मना कर दिया भगवान ने, फल तुम जीतो, मरो, हारो, कुछ नहीं, उसका भी युद्ध मत करो। अरे तो फिर क्यों युद्ध करो? अलग सकता नहीं, ये तो सेकंड लेवल। Why there is a confusion in level 1 and 2? Level 1 में भगवान का कहीं नामो निशान है, level 2 में ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये तीन कैटेगरी मैंने आपको क्लैरिफाई किया, थोड़ा जटिल करके बताया, लेकिन वास्तव में अगर उसको सिंप्लीफाई करें तो केवल वो भगवान से आ सकते हैं और वो भगवान उसके पास कर्म से अना सकते हैं। ये लेवल है, फल से अना सकते, कर्म करता है, फल से अना सकते नहीं है। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला नहीं। Yes.
तो हाँ,
ब्रह्म प्राप्ति इट्स नॉट अबाउट हैप्पीनेस इट्स अबाउट प्राप्ति ब्रह्म प्राप्ति नहीं ब्रह्म प्राप्ति की बात हो रही है प्रसन्नता नहीं बिकॉज वो व्यक्ति आत्मा और शरीर के अंतर को समझता है वो ब्रह्म ब्रह्मवादी बन जाता है वो निष्काम कर्म योग में ब्रह्मवादी बन जाता है। देखो निष्काम कर्म योग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हर एक व्यक्ति को जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उसको वहां सहायता मिलती है क्योंकि वो शरीर और आत्मा के अंतर को समझ करके फलों को त्यागता है। देखो आप चाहे ब्रह्मवादी बनना चाहो योगी बनना चाहो या कुछ भी करना चाहो तो आपको फल का तो त्याग करना ही पड़ता है। आप फल को पकड़ के नहीं काम कर सकते। फल को पकड़ के काम करने वाले जो होते हैं वो कर्मकांडी होते हैं जो केवल फल की इच्छा से काम करने वाले। कर्तव्य समझ कर कर्तव्य महान है या फल महान है? अगर आप किसी मॉरल किसी नीति यज्ञ को नीतिवान को पूछोगे कि कर्म महान है कर्तव्य महान है या कर्तव्य का परिणाम महान है तो वो क्या कहेगा? कर्तव्य महान है वही कहेंगे। सब लोग ऐसे ही बोलेंगे कर्तव्य महान है। तो एक साधारण लोग भी इस बात को मानते हैं कि कर्तव्य महान है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिसको फल से लेना देना नहीं है लग जाए। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि यस हाँ होते हैं नहीं नहीं वो निराकारवादी नहीं होगा तो ब्रह्मवादी होता है जनरली वो निराकारवादी हो सकता है। तो इस तरह से वो कार्य तो करता है लेकिन यहाँ पर उद्देश्य ये नहीं है कि वो केवल भक्तों की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर और योगियों की बात भी नहीं कर रहे। हम केवल उसी की बात कर रहे हैं कि जो कर्म करते हैं कर्म का त्याग नहीं करते लेकिन फल के लिए कर्म नहीं करते। उनका उद्देश्य फल प्राप्ति नहीं है। भगवान यहाँ पर इस बात को प्रस्तावित कर रहे हैं निष्काम कर्म योग में कि फल के लिए कर्म करना ये उचित नहीं है ये प्रस्तावित कर रहे हैं भगवान एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। यस क्या पूछे?
शास्त्रों में बताया गया है कि कोई भी कर्म भगवान को समर्पित करके करे तो उसका मतलब कर्म का बंधन
नहीं रखता
उसमें नहीं रखता।
हाँ लेकिन अर्जुन को ये नहीं पता अभी तक।
तो मतलब हमारे हमारे जीवन आज समझो कोई बड़ी मीटिंग है और हम भगवान से प्रार्थना करें कि भाई ये भगवान मैं ये काम मैं आपको समर्पित करते हुए
हाँ तो वो निष्काम कर्मयोग लेवल टू हुआ। निष्काम कर्मयोग लेवल टू
तो मान लो वो मीटिंग सक्सेस भी हो गई।
हाँ आपने फल भगवान को अर्पण कर दिया। नहीं वो निष्काम कर्मयोग है लेकिन निष्काम कर्मयोग और भक्ति योग में क्या अंतर है वो बाद में डिस्कस होगा। अभी तो हम केवल निष्काम कर्मयोग की बात कर रहे हैं। जनरली क्या होता है कि बिकॉज हम लोग कृष्ण भक्ति में जुट चुके हैं इसलिए हमारे लिए भक्ति योग सबसे उत्तम है हम जानते हैं इस बात को। लेकिन जब हम भगवद गीता में पहले 6 अध्याय की चर्चा करते हैं तो हम सभी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम जानते हैं कि निष्काम कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है जानते हैं लेकिन अभी निष्काम कर्म योग की हम चर्चा करें तो हम उसको समझने का प्रयास करें कि निष्काम कर्म योग क्या है। कर्म करते हैं और फल भगवान को अर्पण करना है ये संक्षिप्त में निष्काम कर्म योग बोला जाता है। कर्म करके फल भगवान को अर्पण करना ये भक्ति योग से आगे का एक स्टेज है। यस
काम है तो भगवान को याद करके अच्छा दिन अपने आप को समर्पित करते हैं या हम हर रोज बोलते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम स्वार्थी है कि उसमें फल पूरा मिले खराब मिले तो भी मुझे उस पर कर्म का बंधन नहीं लगता है।
नहीं, भगवान को अर्पण करने की अगर भावना है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर हमारा केवल यही विचार है कि अगर भगवान अगर सफल हो गया तो दो राजभोग ऑफर करूंगा, अगर फेल हो गया तो एक राजभोग ऑफर करूंगा, तो फिर वो आप निष्काम कर्म नहीं हुआ। फिर वो निष्काम कर्म का अर्थ ही यही होता है कि फल की आशा नहीं रखना। ऐसा नहीं, अर्जुन ऐसे क्वेश्चन नहीं कि जीतेगा या हारेगा युद्ध में, अभी जीतेगा या हारेगा तो अर्जुन ऐसा बोले देखो कृष्णा मैं निष्काम कर्म युक्त करूंगा, युद्ध करूंगा युद्ध करने के लिए करूंगा, हारूं जी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हारूंगा कर्ण के हाथ से नहीं, कर्ण के हाथ से नहीं हारूंगा, तो ये निष्काम कर्म युक्त नहीं हुआ। हारने को तैयार हूं लेकिन कर्ण के हाथ से नहीं हारना, तो ये निष्काम कर्म युक्त नहीं। फास्ट बिकॉज जनरली रिलेटेड के क्वेश्चन ही पूछना है। अगर वो उच्च अवस्था तक नहीं पहुंचा है, अभी नीचे की अवस्था है कि उसकी अभी इतना उसमें इतना त्याग नहीं है कि वो कर्म का त्याग कर सकता है, संन्यास ले सकता है, ऐसे उसके पास है नहीं अभी क्षमता, लेकिन उसका उद्देश्य वही है तो उसी आधार से कार्य करता है। हालांकि उस पूर्णत्व प्राप्त नहीं हुआ, पूर्ण रूप से उसको त्याग नहीं हुआ है उसके मन में, लेकिन फिर भी वो कर्म कर रहा है, वो इंटरमीडिएट स्टेज में, अर्थात वो अभी पहुंचा नहीं है, अभी पहुंचेगा इस तरह से। तो प्रॉपर का तात्पर्य हम कंप्लीट कर लेते हैं जो मैं पढ़ रहा था। देयर इज नो कंसिडरेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, प्रॉफिट और गेन, विक्ट्री और डिफीट इन द एक्टिविटीज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट एवरीथिंग शुड बी परफॉर्म फॉर द सेक ऑफ कृष्ण इज अ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस, देयर इज नो रिएक्शन टू मटेरियल एक्टिविटीज। अर्थात यहाँ पर प्रभुपाद ने पहले निष्काम कर्म योग बताया और अंत में प्रभुपाद ने इस बात को क्लियर कर दिया कि हरेक कार्य का अंतिम जो लक्ष्य है वो है हरितोषणम, संसिद्धि हरितोषणम, स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम। श्रीमद् भागवतम में फर्स्ट कैंटो में ये आता है कि फर्स्ट लाइन आई फॉरगॉट, संसिद्धि हरिदोषम, संसिद्धि हरिदोषम का अर्थ होता है कि हरेक कर्म का एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण की प्रसन्नता, हरिदोषम। भक्त लोग किस तरह से कर्म करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करते हैं और कोई उद्देश्य नहीं, मेरे कर्म से भगवान प्रसन्न हो रहे या नहीं हो रहे, यही तरीका। जनरली हम लोग कई बार सोचते हैं कृष्ण भक्ति में कि हम जब कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं तो हमारा उद्देश्य ऐसा हो जाता है कि भगवान को प्रसन्न करना शुरू में, जब स्टार्टिंग में, फिर जैसे दिन गुजरते जाते हैं वैसे वो जो लक्ष्य था कि भगवान को प्रसन्न करना वो रहता है, लेकिन वो ज्यादा ऊपर चला जाता है और दिखाई नहीं देता बाद में कि कृष्ण को प्रसन्न करना हमारा लक्ष्य है, ये भूल जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम ये भूल जाते हैं, हम कहते हैं कि इस व्यक्ति को प्रसन्न करना, उस व्यक्ति को प्रसन्न करना, और अंत में क्या होता है, अपने आप को प्रसन्न करना, है ना, अपने आप को प्रसन्न करना। और हम ये सब कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के, अतः पुमित विजय श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वानुष्ठित धर्म से संसिद्धि हरिदोषण। लेकिन आप समझे क्या मैंने बताया, भक्त लोग जो मूल बात है वो भूल जाते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए तुम ये कृष्ण भावनामृत में जुड़े हो, हरि नाम दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा लिया है, इस कौन के साथ जुड़े हुए, तुम्हारा फैमिली में अपब्रिंगिंग हुआ है, ये सब कुछ तुम्हारा उद्देश्य एक ही है कृष्ण को प्रसन्न करना, और सब कुछ करने के पश्चात भी कृष्ण प्रसन्न नहीं हो रहे तो क्या फायदा, भगवान तो बता दिए कि मुझे कौन प्रसन्न कर सकता है और कौन प्रसन्न नहीं कर सकता है, कौन सी चीज मुझे पसंद है और कौन सी चीज पसंद नहीं है। अगर आप फिर भी नहीं, वो तो प्रभु शास्त्र वाली बात है, वो तो पढ़ने वाली बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब होता नहीं है। हाँ, ये आपका एक बहाना है, दिस इज एक्सक्यूज, ये बहानेबाजी है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। प्रैक्टिकल में हमें तो हाथ जोड़ना पड़ता है, पांव पड़ना पड़ता है, और हमें पता है कि गलत हो रहा है, फिर भी हमें करना पड़ता है। भगवान को प्रसन्न करने वाला उद्देश्य जिसके पास है, वो व्यक्ति कभी विफल हो ही नहीं सकता। जिसको अगर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा है, वो कभी निष्फल हो ही नहीं सकता। लेकिन वो समझदार होता है और वो जानता है कि भगवान अंतिम परिणाम ऐसा होना चाहिए कि भगवान प्रसन्न होना चाहिए। आप समझे, अंतिम परिणाम ऐसा होना चाहिए। अगर अर्जुन भगवान को प्रसन्न कर रहा है तो वो दुर्योधन को प्रसन्न नहीं कर रहा है, दुर्योधन को प्रसन्न नहीं कर रहा है। तो क्या करना चाहिए उसको, दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहिए या भगवान को प्रसन्न करना चाहिए? भगवान को प्रसन्न करना चाहिए, दुर्योधन को नहीं करना चाहिए। लेकिन कोई आके बोलेगा ऐसा भक्त होता है क्या? दुर्योधन के ऊपर थोड़ा भी दया नहीं किया, ऐसा भक्त होता है क्या? उसको भी प्रसन्न करना चाहिए, ये नहीं होगा। अगर आप इस तरह से जीना चाहते हो तो ये संभव नहीं हो पाएगा। आपको भगवान को प्रसन्न करना है, ये आपको इसको सेंटर में करना पड़ेगा। क्या आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनामृत में जुड़े हो और किसी उद्देश्य से नहीं? तो ये उद्देश्य से कई हमारे छोटे छोटे कर्म होते हैं, अगर आप ध्यान से देखते हो तो कई बार हम खुद भी समझ जाते हैं कि ये कार्य मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ, भगवान की खुशी के लिए नहीं कर रहा। ये कार्य मैं अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, या ये कार्य मैं अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, लोग मुझे मेरी वाह करेंगे इसके लिए कर रहा हूँ। आप खुद ही समझ पाओगे, ये कार्य मैं इसके लिए कर रहा हूँ, इसमें भगवान की प्रसन्नता नहीं है केंद्र में। समझ लेना कि हम गलती कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, ये समझ लेना। और भगवान तो मूर्ख है नहीं, वो तो सब जानते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, वो तो सब जानते हैं। इसलिए अगर आपके कोई ऐसे कर्म भगवान देख रही है कि जो उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं हो रहे, उसका पूरा बोझा जिम्मेदारी आपको पैकेज में गिफ्ट पैकेजिंग करके आपको वापस दे देंगे। लो, ये तुम्हारा जिम्मेदारी, तुम्हारा बोझा तुम संभालो, क्योंकि कार्य तुमने किया था, मेरी प्रसन्नता के लिए नहीं किया था। प्रभुपाद तात्पर्य एक जगह लेक्चर में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती। यस, सो भगवान कह रहे हैं कि यू डू नॉट कंसीडर वेदर इट इज लॉस और गेन, यू हैव टू सर्व फॉर हरितोषणम, कृष्ण के लिए कार्य करना है। तो भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं एक जगह पर कि जब मैं कृष्ण की सेवा कर रहा हूं और उस समय मुझे कोई बहुत ही मुश्किल कार्य आता है सामने, बहुत ही मुश्किल कार्य का अंदाजा नहीं है हमें, जैसे प्रभुपाद का एग्जांपल आप देख लो, मुश्किल कार्य आता है, बहुत मुश्किल होता है, जिसमें आपके धैर्य की परीक्षा होती है, जिसमें आपके सहन शक्ति की परीक्षा होती है, ऐसा कोई मुश्किल कार्य आता है, लेकिन उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो अगर ऐसा कोई मुश्किल कार्य आता है तो वो कार्य वास्तव में मुझे दूसरे कार्यों से अधिक आनंद देता है, ऐसा भक्तिवंत ठाकुर कह रहे हैं। दूसरे कार्य से अधिक आनंद देता है, क्यों? क्योंकि वो वास्तव में मेरा कृष्ण के प्रति जो समर्पण है उसकी कसौटी हो रही है। मेरा वो कसौटी है, दैट द स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस। प्रभुपाद ने दूसरा का एग्जांपल दिया कि जब कृष्ण मथुरा में थे, वृंदावन में थे, वृंदावन से कृष्ण मथुरा चले गए। अब मथुरा चले गए तो जो गोपियां जो थी, विशेष करके ब्रजवासी और गोपियां, बहुत दुखी हो गए और बहुत रो रहे थे। तो हम क्या समझेगा, हाय हाय कृष्ण कितना निर्दयी है, कितना वो तो बेचारे सबको रुला दिया, ऐसा करता है कोई। गोपियां भी रो रही है, ये सब भी रो रहे हैं, नंद यशोदा भी रो रहे हैं, लेकिन हम उनके दुख को समझ नहीं सकते। वास्तव में गोपी और ब्रजवासी जो लोग रो रहे हैं वो कृष्ण, वो अधिक आनंद प्राप्त कर रहे हैं कृष्ण के लिए रोने से, उनको अधिक आनंद प्राप्त हो रहा है। कृष्ण को मिलने में जितना आनंद नहीं मिल रहा था, उतना आनंद उनको उनसे बिछड़ने में हो रहा है। अभी आप बोलोगे ये कैसे है ना, क्योंकि हम साधारण जीव है, हम समझ नहीं सकते कि बिछड़ने का आनंद क्या होता है। लेकिन कृष्ण के वृंदावन वासी जो भक्त है वो इसको समझ रहे, ब्रजवासी लोग समझ रहे, ये कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया। अभी आप कहेंगे प्रभु ये तो कोई नई लॉजिक ही नहीं, हम आगे चल करके ये सारी बात की होगी चर्चा, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि हरेक कार्य कृष्ण भक्ति में भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। यस क्वालिफिकेशन होगा, लेकिन अभी सीधी सी बात, जितना शुक्र डालोगे उतना मीठा होगा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते। भगवान कहते हैं आपकी हर एक छोटी बातों का, इच्छाओं का पूरा आदर किया जाएगा, भगवान ऐसा कहते हैं। अभी अगर आप चाहते हो कि मुझे प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो भक्ति के साथ साथ, तो आपकी पॉइंट टू बी नोटेड, तो वो भी आपको मिलेगा, वो सब मिलेगा, लेकिन आपके पास बोलते ना गागर तो गागर ही रहेगी, सागर तो आएगा नहीं उसमें। अगर आप गागर लेके खड़े रहोगे तो सागर उसके अंदर नहीं भरेगा, और कृष्ण के पास सागर है। अभी आप खुद डिसाइड करो कि आपको क्या चाहिए, ऐसे अगर आप कृष्ण की प्रसन्नता चाहते हो या अपनी प्रसन्नता चाहते हो, वो हमें डिसाइड करना है। आप कुछ पूछ रहे थे, यस हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो, ये निष्काम कर्म योग में आता है, क्योंकि आप भोग लगा के खा रहे हो इसलिए, और भक्ति योग में वो आता है कि मैं आज भगवान को पास्ता खिलाना चाहता हूँ, दैट इज भक्ति योग, समझे ना। दो अंतर ये है, विल डिस्कस, 9 चैप्टर में पूरा डिस्कशन आएगा इसका। यस नो प्रश्न, आप कोई बात नहीं, प्रश्न पूछिए। किसने आपके हाथ पांव किसने बांधे, अरे वो छोड़ दो, भगवान के भक्तों के ऊपर, गुरु के ऊपर, कृष्ण के ऊपर जो गलतियां कर दी वो लोग संभालेंगे। तुम शरणागत हो जाओ, सिंपल, गुरु के शरणागत हो जाओ, कृष्ण के शरणागत हो जाओ, उनका ही धंधा है, वो लोग संभालेंगे। तो जो गलतियां हमसे हो गई है उसको तो आप वापिस तो नहीं कर सकते ना, अंडू उसका तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन उसका कुछ उपाय कृष्ण या गुरु कर सकते हैं, शास्त्र कर सकते हैं। इसलिए जो गलती हो गई वो हो गई, उसको छोड़ दो, उसको उसको लेकर के रोना नहीं, जो हो गया वो हो गया, आप क्या करें, जो हो गया आप क्या करोगे वो बताओ, दैट्स इम्पोर्टेंट।